Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hariyo, Pujya Premapuriji Maharaj, Pujya Akhananji Maharaj, Pujya Adhitanji Maharaj, Pujya Shri Swamdat Ji, sabhi ko vandan karte hue, jo aradhan mahotsav hai, is samay hamare beech mein Mukesh Ji padare hain, Acharya Ji ke roop mein, to vah mangalacharan se yah jo aradhan mahotsav hai, uska unka pura pura shubharambh karenge, main vinanti karunga ke woh aaye.
हरि ओम मा जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवान्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघाञ्ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीखिणो जग्ने कृणवन्ति विदथे खुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो द्रतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं मा येन जग्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन्द्रचः सामजजो गोखे जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मेश्च तग्गो सर्वमोतं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारधिरश्वानिव जन्मनुक्षानेमीयते भीसुर्विर्वाजिन इव रत्प्रदिष्टं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्रथम माल्यार्पण से साराधन महोत्सव का शुभारंभ होगा मैं तिजोरीवाला जी से विनती करूंगा कि वो पधारे तत्पश्चात तिजोरीवाला जी अपने भाव अर्पण करेंगे
परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी को चरणों में प्रणाम सभी संतों के चरणों में प्रणाम सोमवीर जी को भी प्रणाम आज से 29 साल पहले की बात है महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तब यही समय था सुबह में सत्संग हॉल में उसकी खबर आई और दोपहर को सब लोग मैं और जगदीशपुरी जी महाराज और गणेश नारायण जी महाराज दिल्ली गए मुंबई से और महाराज जी के वहां सभी उत्सव में भाग लिया महाराज जी को जल समाधि दिए गई थी सारा वृंदावन में महाराज जी को दर्शन देने के लिए सभी ठिकाने ले गए थे बिफोर जल समाधि हुई थी उसके पहले अब संत महात्मा की बात ऐसी है कि हमें कभी ऐसा अभी तक नहीं लगा है कि स्वामी जी महाराज की प्रेजेंस हमारे में नहीं है आप कहेंगे कैसे आते ही महाराज जी के वाणी सुनने को हमको मिलती है और 7:10 हो गया है यहां तो 7:10 से 7:30 बजे तक स्वामी जी महाराज की टेप यहां रामायण पे चलती है और प्रसंग भी ऐसा हुआ कि कल रावण का वध हो गया तो आज सब महाराज जी का हम उत्सव मनाते हैं वो रामनवमी का भी उत्सव रावण वध का भी उत्सव सब मनाते रहे। अब महाराज जी का जो सत्संग के बारे में बात थी कि अगर आप वृंदावन में हो, बम्बई में हो, बम्बई में तो महाराज जी की बड़ी कृपा रही है। मैं समझता हूं 5 से 6 महीना तक महाराज जी बम्बई में रहते थे और महाराज जी की वाणी इतनी सरल, प्रसंग तो जो शास्त्र है वो शायद मुश्किल समझने में हो, महाराज जी की वाणी इतनी सरल थी कि हमारी समझ में आ जाए। और एक दूसरी बात भी थी, कोई कहे कि महाराज जी अभी हमको समझ में नहीं आता है तो महाराज जी बताते थे फिक्र मत करो, सुनते सुनते तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा स्वामी जी महाराज बताते रहते हैं। और महाराज जी के सत्संग का महिमा की क्या बात करूं, मैं एक दफे रविवार के दिन महाराज जी का सत्संग में सुबह में न आ पाया और शाम को फ्लैट पर चले गए महाराज जी के विपुल को और वहां मैं बैठा था। कई सत्संगी बैठे थे, महाराज जी भी कुछ प्रश्न पूछे नहीं तो अपने आप भी जो कुछ भी उपदेश देना हो वो करते रहते थे। तो एक सत्संगी ने बताया कि मेरे को कहा कि आप आज सुबह में सत्संग सुनने के लिए नहीं आया, मैंने कहा हाँ मैं नहीं आ पाया, मैं टेप सुन लूंगा। और महाराज जी का जवाब क्या था, सत्संग सुनना और टेप सुनने में एक ही बात नहीं है। तो ये तो है महाराज जी का। और दूसरा कि कोई ऐसा साल नहीं गया होगा कि जब मैं वृंदावन न गया हूं, पहले मैं सीताराम शरण जी महाराज अयोध्या जी के वहां उसके रामनवमी के प्रसंग पर जाता था और उसके पहले कि आपके वर्ष मैं वृंदावन आके महाराज जी को प्रणाम करता हूं, तथा रहता हूं थोड़े दिन। ऐसे सत्संग की महिमा हमको महाराज जी ने बताई थी और अभी तक आज मैं समझता हूं कि करीब करीब 25-50 साल से ज्यादा समय हो गया मैंने सत्संग नहीं छोड़ा है। और मेरी सब सत्संगियों को, सब गुरुजियों को यही प्रार्थना हूं कि आप आशीर्वाद दें कि मैं अगले जन्म में भी सत्संग कर सकूं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।
संतों के चरणों में वंदन करते हुए, हमने पुराणों में कथाओं में बहुत सुना हुआ है कि जब भी कोई अवतार होता है तो पूरी सृष्टि का रूप बदल जाता है, पूरी सृष्टि अपनी अनुभूति अलग रीत से कर रही है, पेड़ पौधे सब बातें होती हैं। उसी प्रकार जब भी वह निर्वाण की ओर जाते हैं तो भी यह सृष्टि अपना कमाल दिखाती है। संतों की एक विद्वत्ता रहती है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें वो रख के जाते हैं। महाराज जी जब भी उन्होंने अपरम्लीन हुए तभी यहां ही प्रेमपुरी में कई बातें ऐसी अपने बीच में हुई, कई लोग यहां रुदन करते हुए दिखे गए थे कि जैसे घर के व्यक्ति चले गए। यहां प्रेमपुरी में जो वातावरण था अगर आपने देखा होगा, क्योंकि पिताजी नहीं गए थे और हम लोग यहीं आए थे, यहां कुछ कार्यक्रम पूरा संभालना था क्योंकि जो पब्लिक थी वो भी बहुत दुखित थी, तो उसी में यहां बैठकर जो अनुभव हमने किया होगा या प्रेमपुरी में जितने भी सत्संगी स्वाध्यायी जो भी प्रवचन सुनने आते थे, नहीं आते थे या दूसरे में भी आते थे, सब यहां इकट्ठे होके अपने जो भाव प्रकट कर रहे थे कि किस तरह से महाराज जी उनके जीवन में रहे। तो जीवन में प्रागट्य और निर्वाण दो ऐसी चीजें हैं कि उसके बीच में जो अपना जीवन काल है वह हम किस तरह से गुजारे और संतों के चरणों में आकर जब हम बैठते हैं तो यह अनुभूति करते हैं कि हम बहुत ही शांत और सुजे हुए हैं और हम कुछ जीवन में अच्छी बातें कर सकते हैं। महाराज जी का जो निकटता रही वह उसका तो एक ही मैं बात कर सकता हूं, जैसे सोमदत्त जी के दादाजी रहे और गुरु भी रहे, उसी प्रकार मेरे हमारे पिताजी जो हरि बैड्रेस वाला थे उनके भी गुरु के रूप में रहे, तो हमारे भी वो दादा गुरु थे, तो हमारे में और सोमदत्त जी में इतना तो, बाकी तो हमारे में बहुत फर्क है। क्योंकि जो हम सुनाते हैं वो खाली सुनाते हैं, और वो जो उनकी वाणी से जो हम सुनते हैं वो अद्भुत रहता है, पूरी पाकट वाणी है। हमारा जी अद्वैतानंद जी महाराज की तो क्या बात करें, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन में और अन्य प्रवचनों में जभी वो आते हैं और उनकी वाणी हमें प्राप्त होती है तो बहुत ही आनंद होता है। सालों साल से जब से यह संस्था बनी होगी तब से मुझे महाराज जी यहां पधारते हैं और आज वो हमारे बीच में हैं, तो बहुत ही आनंद आता है कि ऐसे संत हमारे बीच में आ रहे हैं। जीवन में यह सब बातें घटनाएं होती रहती है। जगदीशपुरी महाराज अचानक ही कल उनकी तबीयत में थोड़ी तब्दीली आई। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मुझे फोन आया प्रकाश का कि भी तकलीफ है, और उनको हरकिशन में दाखिल किया गया। तो जीवन का एक क्रम है कि कुछ न कुछ जीवन में घटनाएं ऐसी बनती हैं कि हम लोग विचलित हो जाते हैं। प्रातः प्रवचन के लिए पूज्य महाराज जी को प्रार्थना की और अन्य दिवसों में भी जगदीशपुरी जी कब आएंगे किस तरह से, मेरे ख्याल से तो दो तीन दिन में वापस आ जाना चाहिए, कुछ खास नहीं है। कल मिला था मैं वहां जाके। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनका स्वास्थ्य जगदीशपुरी जी महाराज का बहुत ही जल्द अच्छा होके हमारे बीच में वह आए। तब तक प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन पूर्व पूज्य अद्वैतानंद जी महाराज द्वारा होगा, और जो और भी एक संत आने वाले थे उनका भी नाम जगदीशानंद जी है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे, वो तुलसी निवास से यहां आने वाले थे। तो सभी को चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो आज का संचालन का कार्यक्रम है हमारे परम प्रिय अखंडानंद जी महाराज के ही जो कृपा पात्र है उनके परिवार के हिसाब से और उनके ज्ञान के हिसाब से, और एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि जो बाबा जी हमारे बीच में हमेशा आते थे वह भी अभी उन्होंने भी भगवे संत संन्यास ले लिया है, और अद्भुत मैं ये समझ सकता हूं कि जब हमने उनको गृहस्थ के रूप में हमेशा देखा था यहीं यही सोफे पर बैठकर, तो अभी जब वह संन्यास ग्रहण किया होगा तो जो अखंडानंद जी महाराज की ही प्रतिकृति जैसे होंगे, तो ऐसे जो सन्यासी संत हमारे बीच में, हमारे हर वर्ष बाबा जी के रूप में यहां आते थे और उनके ही परिवार के, उनको यहां से वंदन करते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा सुंदर जी से संचालन संभाले। उसके पूर्व एक बात भी कह दूं कि जो यहां हमेशा कुछ न कुछ बुक्स का जो आलोचन यहां होता है जो, तो उसमें विमोचन जो होता है थोड़ा सा समझ लेना, हमारे में फर्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का नशा उतरता नहीं है और सीधा महाराज, ठीक है। तो जो विमोचन होने जा रहा है तो उसमें अखंडानंद जी महाराज का ये कहना था कि मैं जो मेरी जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह ईश्वरीय, मुझे जो भी समझ में आई उस तरह से ईश्वरीय वाणी का मैंने लिख रहा हूं, तो यह जो ग्रंथ है उसका कोई भी अनुवाद करे, नहीं तो यह रिस्ट्रिक्ट रहता है कि मेरी कॉपी कोई न कर सके, इस तरह से बहुत रहता है। मैंने उन्होंने फ्री कर दिया कि ईश्वरीय वाणी है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी ग्रंथ इसको छाप सकता है किसी भी तरह से दुनिया भर से, तो यह एक पवित्र ईश्वरीय वाणी रहती है। तो उनका जो यहां विमोचन होगा और नीचे काउंटर भी लगा होगा, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा ललित अच्छा बोल रहा है।
इस आराधन महोत्सव पर महाराष्ट्र का जो भी साहित्य है उसके ऊपर 50% की छूट है आज, और जो पुस्तक नीचे नहीं है आप अपना नरेश भाई नीचे हैं उनको ऑर्डर लिखवा दीजिए, तो या तो आप विपुल से ले सकते हैं नहीं तो प्रेमपुरी आश्रम में भी वो सोमवार को आके दे सकते हैं, उनको बता देना कि आपको क्या सूट करता है। लेकिन जितने से जितनी पुस्तक महाराष्ट्र की पूरा साहित्य उस सबके ऊपर 50% की छूट है।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन् आत्मनि मायया वहिर्योद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णानंद दया दृशारस दया शश्वत प्रसादोदया ब्रह्म ज्ञान विनोदया जनमनोमोदाय निःखेदया विश्व प्रेम विकास हासमुदया त्रैलोक्य संपद्दया पूर्णानंद दया मदीय मन से कांचित कलाम्यच्छतो समुद्र शास्त्राधमृताभनीरम आनयया वर्षति जीवनाय मेघायमानामतिरेवयस्य भजे तमानंदमखंडरूपम भजे तमानंदमखंडरूपम। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी जो हमारे आज के इस आराधन दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं उनके श्री चरणों में आप सबकी ओर से मैं प्रणाम करता हूं, और आपकी अनुमति से इस उत्सव का संचालन, ये संचालन नहीं है, एक तो चलना होता है, जीवन में हम चलते हैं और जरा जब आनंद आता है तो नृत्य करते हैं, तो ये संनर्तन है, ये जो जीव है ये नाच रही है, और किस लिए नाच रही है कि अपने गुरु के उत्सव के अवसर पर इसका नर्तन हो रहा है। तो ये संचालन तो नाम है, व्यवहारिक रूप से जिह्वा का नर्तन है, और ये जब नर्तन आप देख रहे हैं तो देख कैसे रहे हैं कि कानों से, ये वाणी आपके कान में जा रही है, तो आपको क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये एक दृष्टि है महाराष्ट्र की हमारे जीवन पे। हमारे मधुसूदन जी तुजीरुवाला बोल रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, और उन्होंने बताया कि सारा का सारा जीवन महाराष्ट्र का सत्संग में, और उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा कि टेप सुनने में वो प्रभाव नहीं पड़ता जो साक्षात सुनने में होता है। तो हम लोग तो महाराज जी के टेप हैं, महाराज जी की बात हम लोग सुनाते हैं और आप लोग बटन दबाते हैं कि आज ये अवसर है, ये उत्सव है, आप आओ सुनाओ, तो ये हम लोग तो टेप हैं, इसमें वो मजा नहीं आएगा जो महाराष्ट्र के साहित्य में आप लोग सीधे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और महाराष्ट्र की कृपा। हमारे भाई गिरीश भाई पिताजी की याद कर रहे थे, आपके पिताजी इतने चतुर, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के, किस महात्मा को, किस संत को किस चीज की आवश्यकता है उसका वो आकलन ठीक ठीक कर लेते, और उसकी सेवा में किसी को नियुक्त करके उस काम को बिना अपना नाम आए और वो करा देते थे। ये चतुरता हमको मालूम है, ये बताते नहीं हैं, लेकिन बिना अपना नाम आए उस महात्मा को क्या आवश्यकता है, और वो पीछे से करा देते थे, ये बात हमको मालूम है। एक बात, दूसरी बात, इनको याद होगा कि नहीं, बचपन की बात है, यहां पे करपात्री जी महाराज आए महाराज जी, और उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन करना चाहा, तो उस समय कुछ उपद्रवी तत्व थे बंबई में जो नहीं चाहते थे कि उत्थान हो या इस ढंग के यज्ञ हो। बात इनके पिताजी तक आई, उन्होंने चातुरी क्या निकाली कि जो हमारे कुली हैं, मजदूर वर्ग है, धोबी, धोबी को धोबी बोलते हैं, धोबी दर्जी, इन लोगों का संगठन तैयार किया और इनके लोगों को जुटाया और उनको जुटा के कीर्तन में, कीर्तन के नाम पे कि सब लोग यहां रात दिन 2400 घंटा कीर्तन होगा और उस ढंग से 100, 200, 500, 1000 लोगों की व्यवस्था कर दी कि ये लोग कीर्तन करते रहेंगे और आप यज्ञ करें। तो इतनी जब भीड़ देखते थे वो लोग कीर्तन के नाम पे, तो कोई बास नहीं फटका और महीने भर या डेढ़ महीने वो यज्ञ चला और निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये हमारे हरि भाई देशवाला की चातुरी थी, और वो काम निर्विघ्न, ये स्मरण है। और महाराष्ट्र के संरक्षण में, महाराष्ट्र की उपस्थिति में ये सब हुआ था। तो कृष्णानंद जी महाराज, कृष्णानंद, स्वामी कृष्णानंद जी, उनका पूर्वी लोगों पे बहुत यहां पे वो था, तो उनके उनका नाम पे ये काम हुआ। और कर्पाते जी बहुत आनंदित हुए, वो जब यज्ञ संपन्न हो गया लक्ष्मी नारायण, बहुत बहुत प्रसन्न हुए और भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। ये महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र का ये 29वां, जैसा आपने बताया हमारे मधुसूदन भाई जी ने, कि ये 29वां आराधन महोत्सव है। 19 नवंबर 1987 के रात में, मतलब अपराह्न ब्रह्म मुहूर्त में महाराष्ट्र ने शरीर अपना छोड़ा और वो घटना उनको मालूम। और इसको जब हम तिथि में ले जाते हैं तो महाराष्ट्र की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है। तो इधर शुक्ल पक्ष है जब शरीर छोड़ने में और उधर कृष्ण पक्ष है अमावस्या श्रावण की। तो एक तरफ से कृष्ण शुरू होते हैं और श्वेत शुक्ल पक्ष मतलब शंकर जी, तो एक कृष्ण और एक शंकर। कृष्ण की नगरी में जन्म होता है और शिव की नगरी में जन्म होता है और कृष्ण की नगरी में तिरोधान होता है। तो ये जो जीवन और तिरोधान है सबके जीवन में लगा है। और यही प्रश्न था महाराष्ट्र का परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कि ये जो मुक्ति होती है ये जीवन में जीते जी होती है या मरने के बाद होती है, शरीर छूटने के बाद होती है मुक्ति, मुक्ति के बारे में प्रश्न था उड़िया बाबा जी महाराज से। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम इसमें बुद्धि क्यों लगाते हो कि मुक्ति कब होती है, ये जन्म और मृत्यु ही कहां होती है। जब जन्म और मृत्यु होगा तब न तुम मुक्ति की कल्पना करोगे, तो तुम जन्म और मृत्यु को ही मिथ्या मानो, तो मुक्ति दोनों ही मिथ्या है। महाराज जी कहे कि ये प्रश्न पूछने के पहले मैंने बहुत चिंतन किया था कि यदि बाबा बोलेंगे कि जन्म जीवन मुक्ति होती है तो मैं उत्तर मुक्ति की बात करूंगा, और जब बाबा बोलेंगे कि उत्तर मुक्ति होती है, मरणोपरांत मुक्ति होती है, तो मैं जीवन मुक्ति के बारे में बात करूंगा। कहे कि दोनों तट काट दिया, तो कहे कि ऐसा लोकोत्तर उत्तर हमको मिला ही नहीं था किसी से और हमारी कल्पना में भी नहीं था। तो कहे कि मैं तो लट्टू हो गया इस उत्तर को सुनते ही, मैं लट्टू हो गया बाबा पे। तो और फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र को उनका साथ मिला, महाराष्ट्र कहते हैं कि भगवान या ईश्वर के प्रकट होने के बाद भी मेरे जीवन में वो स्पष्टता नहीं आई जो उड़िया बाबा को मिलने के बाद आई। तो महात्मा का जीवन में प्राकट्य होना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर मिलेगा तो कितनी देर के लिए, कब तक के लिए? और उस ईश्वर अगर मिलता भी है, कई लोग तो ये चाहते हैं कि ईश्वर मिलेगा तो एक सूची रखते हैं कि ये मांगना है, महाराष्ट्र बोलते हैं हम क्या महाराष्ट्र की, हमें वाणी कह तो दिया कि टेप हूं, तो महाराज जी की वाणी निकलती है। तो महाराज जी कहते हैं कि कई लोग तो सूची रख के रखते हैं कि ईश्वर आएंगे तो ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। अब महाराष्ट्र वहां प्रश्न उठाते हैं कि तुम ईश्वर को चाहते हो कि तुम ईश्वर से चाहते हो, तो ये विचार करने की बात है कि हम ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर को चाहते हैं। तो हमारे जीवन में ईश्वर की चाहना बढ़े, ईश्वर से प्रेम हो, यही आराधना है। और यही आराधना हम गुरु के रूप में कर रहे हैं। अगर ईश्वर हमारे समक्ष आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो हम गुरु के लिए करें, ये हमको सिखाने के लिए इस ढंग के अवसर आते हैं कि हमारे हृदय में कितनी नम्रता है, हमारे जीवन में कितनी श्रद्धा है, हमारे जीवन में कितनी उस कितना सेवा भाव है, तो ईश्वर के प्रति वो सेवा भाव हमको प्रकट करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। उस माध्यम के लिए हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, हम इष्ट की पूजा करते हैं, जो हम ठाकुर जी की पूजा घर में करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो हमारा अभ्यास बना रहे कि कल को ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, तो कुछ नहीं हो तो कम से कम वो क्रम याद रहे, उस क्रम से हम वो पूजा कर सकें। महाराज जी कहते हैं कि जब उनके जीवन में प्राकट्य हुआ ईश्वर का, तो कहे कि ये जिह्वा हिलती नहीं थी, शरीर निश्चेष्ट हो गया, वो भी हिले नहीं, पलक झपकना बंद हो गई, सांस चल रही है कि नहीं चल रही ये भी भान नहीं रहा। तो अब उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसका अभ्यास जीवन में होना चाहिए। फिर महाराज जी ने कहा कि मानसिक पूजा हमारी शुरू हुई, और जैसे गजग्राह की वो लीला आपको ध्यान होगी भागवत की, कि वो उसने पकड़ लिया मगर ने पैर, तो इस संसार ने हमारा पैर पकड़ा हुआ है, हमारी इच्छाएं धसी हुई हैं इसमें, और ऐसे में अगर ईश्वर का प्राकट्य होता है तो हमारी पूजा कैसे होगी, तो वो मानसी पूजा का वहां पे विधान है। अलग से भी महाराष्ट्री ने एक दैवी साधना और मानसी पूजा करके छोटा सा ग्रंथ लिखा है, और भक्ति सर्वस्व करके एक ग्रंथ है, उसमें पूरा का पूरा, उसमें तो महाराज जी ने हृदय उड़ेल दिया है कि आपको राम की पूजा करनी है तो कैसे करो, कृष्ण की पूजा करनी है तो कैसे करो, शिव की पूजा करनी है तो कैसे करो, कौन कौन से मंत्र हैं, वैदिक मंत्र जो विधिक हैं वो मंत्र महाराज जी ने वहां उल्लेख कर दिए हैं सारे के सारे। लेकिन उसके बाद ये है कि जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और उसी से सब कुछ प्राप्त होगा, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। वो बातें पढ़ने के लिए ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, पर मनमाना मंत्र नहीं उठाना चाहिए, मनमानी पूजा पद्धति नहीं उठानी चाहिए। जो आपके गुरु ने विहित किया है जीवन के लिए उसी में कल्याण है, इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए। ये बातें महाराज जी की हैं। अच्छा, महाराज जी ने बताया कि ये जो मनमाना मंत्र है ये कब तक काम करता है, कि जब तक उससे हमको जो हमारी इच्छाएं हैं पूरी हो रही हैं। महाराज जी ने बहुत मजा लिया है इन बातों का। महाराज जी कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं बांके बिहारी जी के यहां और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और लेते हैं क्या, उस समय उस जमाने में आ जाता रहा होगा 5 रुपए का फूल और 5 रुपए का पेड़ा, अब आजकल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, और लेके कहते हैं कि बिहारी जी के पास हाथ लेके झाड़ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमारा ये काम करना है। तो अब वो बिहारी जी तो चुप हैं, तो समझते हैं कि सुन लिया। फिर उसके बाद और एक लिस्ट आ जाती है कि ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए, फिर एक काम होता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, और मतलब बिहारी जी को कोई बुद्धि नहीं है और वो जानते भी नहीं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सब अपनी तरफ से हम बताते हैं और समय भी दे देते हैं उनको। और ये सब होता कितने में है भाई, कि 5 रुपए के फूल में और 5 रुपए के पेड़े में। तो बिहारी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस काम के लिए आपका करोड़ों खर्च होकर घूस में लगना है और वो वहां 10 रुपए में हो रहा है। महाराज जी कहते हैं ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा है, भगवान को बेवकूफ बनाने हम चल देते हैं, तो ये कैसी आराधना है। एकदम महाराज तो बेलाग लपेट बोलते हैं, तो उनकी बात हम आपको सुना देते हैं, ये सब कोई जल्दी सुनाता नहीं है। आजकल महाराज जी कहते हैं कि आजकल तो भाई जरा शिष्य लोगों को संभाल के चलना पड़ता है कि इसको कौन सी बात बुरी लगती है और कौन सी अच्छी लगती है, ये न बिगड़ जाए। तो ये महाराज जी बहुत फक्कड़ों में रहे, गंगा के तट पे रहे, तो इतने फक्कड़ महात्माओं का दर्शन किया कि कोई महात्मा पत्थर मारता था, ऐसे महात्मा का सत्संग किया कि जब आ रहा है कोई देख रहा है कि वो सत्संग के लिए आ रहा है तो पत्थर मारे वो महात्मा, गालियां दें और इतनी बुरी बुरी गालियां दें कि सामान्य व्यक्ति उसको सह न सके, और महाराज जी उनके पास भी जाए बैठे, तो एक बार दो बार 5 बार 10 बार हुआ और वो गालियां बंद न हो, स्वागत गालियों से ही हो। तो महाराज जी ने एक बार हाथ जोड़ के पूछा कि ये महाराज जी आप गालियां क्यों देते हैं, तो कहे कि देख तू मेरी गाली सह लेगा तो संसार की गाली तेरे को बुरी नहीं लगेगी, मैं तेरे को पक्का कर रहा हूं। और उसका उदाहरण भी मिला, यही बंबई की घटना है या कहीं की, हमको याद नहीं है, स्मरण ठीक नहीं है, कोई यज्ञ था बड़ा और उसमें बहुत महाराज जी उस समय भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे महाराज जी, और बहुत सब बड़ी सभा जुटी थी, 10 या 20 हजार लोगों की भीड़ थी, और उसमें जिन लोगों ने चंदा दिया था उसकी सूची पढ़ी जा रही थी। तो जो सूची बनती, अब तो जानते हैं, जैसे हमको सूची दी गई यहां ट्रस्ट से, गिरीश भाई ने दी, यदि मैं पढ़ दूं ये तो सब नाराज हो जाएंगे कि कुछ है नहीं एक भी नाम जिस सूची के यहां पे उपस्थित नहीं है, बहुत आश्चर्य है। तो वही कह रहे, ये ईश्वर का नर्तन है, ये ईश्वर का संचालन है जो वो कर रहे हैं, इसमें हम कैसे संचालन कर सकते हैं। तो अब वो सूची पढ़ रहे थे महाराज श्री, पढ़ते 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 जब पूरी हो गई तो रख दिया और कह दिया कि हो गई। तो एक महात्मा खड़े हो गए, क्योंकि आपने हमारा नाम जानबूझ के नहीं लिया, जबकि सूची में था नहीं, महाराज श्री की गलती नहीं थी। पर महाराज श्री ने कहा कि मैं भाई गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। तो कहने, ऐसे नहीं, तुमने हमारा नाम जानबूझ के नहीं लिया है कि हमने चंदा दिया और हमारा नाम न आवे लोगों के प्रति, हमारी जो श्रद्धा है वो न उपजे, इसलिए आपने नहीं लिया नाम। तो महाराज श्री का गलती हो गई, भाई आप जो बोलो वो हम कर लें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे गलती मानने से नहीं, और सबके सामने ये बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़े हो और कान पकड़ो और उठा बैठक करो यहां पे मंच पे। तो महाराज जी कर किया, तुरंत किया, उसमें ये नहीं। अच्छा, अब लोग महाराज जी को जितना चाहते थे वो तो नाराज हो गए सारे के सारे उस महात्मा पे, और मारने के लिए तैयार। महाराज जी ने हाथ जोड़ के लोगों से भी प्रार्थना की कि नहीं भाई, ये तो हमारे मित्र हैं और हम लोगों का ये हंसी मजाक चलता रहता है, तो आप लोग इसको ऐसा, तो उनको भी, उनकी भी रक्षा और उस भाव की भी रक्षा, और अपना कुछ नहीं, अपने शरीर में कुछ नहीं कि मान है कि अपमान है, वो ऐसे वहां पे कान पकड़ के उठा बैठक की उन्होंने। तो ये हमारे जीवन में इतनी नम्रता, और हमारे जीवन में होता क्या है कि हम किसी से एक बात बर्दाश्त नहीं होती है। कर्मचारी है, हमको ठीक से मालूम है कि वो कर्मचारी है, तो यदि हम उसके मालिक बनने जा रहे हैं तो हमको अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, उस पे शासन करने के लिए महाराष्ट्र से ही सीखना चाहिए। महाराष्ट्र ने कभी किसी को डांट के नहीं बोला, और महाराष्ट्र ने जिस ढंग से वो हाथ पैर हैं हमारे, तो जैसे हम कहीं नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं, नौकर को भेज देते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते तो उस नौकर से कराते हैं, तो वो हमारे हाथ पांव हैं। तो जैसे हम अपने हाथ पांव को मारते नहीं हैं, बुरा नहीं कहते हैं, वैसे हम अपने नौकरों को, सेवकों को कैसे कह सकते हैं। तो सेवकों से जब हम कड़ा बोलते हैं तो उनके मन में, आप कितने भी बड़े हों लेकिन उनके प्रति में, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा कभी नहीं जगेगी, वो आपका काम भरले कर देंगे, पर जिस भाव से करना चाहिए वो भाव नहीं आएगा। तो अच्छा, उस भाव की अगर उत्पत्ति हो गई तो वो फिर बिना बोले भी आपका काम करेंगे। ये महाराष्ट्र से हम लोगों को सीखने के लिए है ये बातें, कि हमको अपने सेवकों को कितने प्रेम से रखना है। महाराष्ट्र कहते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां के सेवकों को देख के ये अंदाज कर लेते हैं, ये अनुमान लगा लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, सेठ जी का स्वभाव कैसा है।